खाना खाने के बाद सभी लोग बाहर निकलने लगे। तभी आदित्य ने भरपूर जोश और खुशमिजाज अंदाज में झलक की तरफ देखा। अगले ही पल उसने झलक का हाथ अपने हाथों में लिया, उसके हाथों को प्यार से चूमते हुए बोला, समझ में नहीं आता कि मैं किस तरह तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं, मेरी जिंदगी में फिर से जान डालने के लिए, मेरी बेजान और बेरंग जिंदगी को दोबारा रंगीन बनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे ही सिद्धार्थ खुराना ने यह दृश्य देखा, उसके हाथों की नसें तक तन गईं, उसका चेहरा गुस्से से पूरी तरह लाल पड़ गया। वो ज्यादा देर तक ये सब देख ही नहीं पाया और गुस्से में अपनी कुर्सी छोड़कर सीधे वहां से अपने कमरे की ओर चला गया। सिद्धार्थ का वहां से इस तरह चले जाना लगभग सभी लोगों ने नोटिस कर लिया था, लेकिन झलक ने उसकी तरफ पलटकर देखना तक जरूरी नहीं समझा। वो मुस्कुराते हुए उर्वशी खुराना की तरफ मुड़ी और बड़े प्यार से बोली, वैसे मिसेज उर्वशी खुराना, खाना बहुत टेस्टी था। आई होप शादी में खाना इससे भी ज्यादा मजेदार होगा। इतना कहकर वो मुस्कुराते हुए वहां से निकल गई। उर्वशी को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। जो लड़की हमेशा उसकी इतनी इज्जत करती थी, इतनी विनम्र रहती थी, आज उसका अंदाज बिल्कुल अलग था। वो पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। वहीं आकांक्षा गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, नहीं, मुझे मेरी शादी के दिन किसी भी तरह का कोई ड्रामा नहीं चाहिए। ये शादी मेरा सपना है और मैं इसमें किसी भी तरह का हंगामा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। इतना कहते हुए उसने अपने लंबे नाखून अपनी हथेली में इतनी जोर से गड़ा लिए कि उसकी हथेली लाल पड़ गई। उधर रणविजय भी गुस्से में दांत भींचे खड़ा था। वो मन ही मन बोला, वेल प्लेड झलक, वेल प्लेड, वाकई बहुत अच्छा खेला तुमने। आज तुमने काफी दूर की सोच दिखाई है, लेकिन तुम्हारा जो भी प्लान है मैं उसे पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा। उसने तुरंत नैना ओबरॉय की तरफ देखा और बोला, आप लोगों ने उसे इतनी आसानी से यहां से कैसे जाने दिया? आपको कुछ तो करना चाहिए था। नैना ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, मैं क्या करती, उसने ऐसी कोई हरकत ही नहीं की जिससे हमें रिएक्ट करने का मौका मिलता। वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आई, हल्दी और मेहंदी की रस्म निभाई, खाना खाया और यहां से चली गई। समझ में ही नहीं आ रहा कि कोई इंसान इससे ज्यादा नॉर्मल कैसे हो सकता है, लेकिन न जाने क्यों मुझे लग रहा है कि वो कल शादी वाले दिन जरूर कुछ बड़ा करने वाली है। ये सुनते ही आकांक्षा ने गुस्से से दांत भींचने में कहा, नहीं, मुझे अपनी शादी में किसी भी तरह का कोई ड्रामा नहीं चाहिए। ये शादी मेरा ड्रीम है, मेरा सपना है। मुझे हर हाल में इस बात की गारंटी चाहिए कि झलक मेरी शादी में किसी तरह का कोई हंगामा नहीं करेगी। वही रणविजय फिर मन ही मन बोला, ब्रावो, वेल प्लेड झलक, तुम सच में मेरी सोच से कहीं ज्यादा चालाक निकली। लेकिन चाहे तुमने कल के लिए कुछ भी प्लान किया हो, याद रखना मैं कल तुम्हारी पूरी दुनिया हिला दूंगा। मैं ऐसा खेल खेलूंगा कि तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। उसके बाद तुम कभी किसी के सामने सिर उठाकर खड़ी होने की हिम्मत भी नहीं कर पाओगी। ये सोचते हुए रणविजय का चेहरा पूरी तरह गुस्से और नफरत से भरा हुआ था। वहीं दूसरी ओर सिद्धार्थ अपने कमरे में पहुंच चुका था। वो गुस्से में कमरे का सामान इधर उधर फेंक रहा था और बुरी तरह तोड़फोड़ मचा चुका था। वो मन ही मन बड़बड़ाया, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, उसने कुछ किया ही क्यों नहीं। उसे चिल्लाना चाहिए था, उसे कहना चाहिए था कि वो मुझसे प्यार करती है, वो मेरे साथ बिताए हुए पलों को किसी और के साथ नहीं देख सकती, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो क्या वो सच में कल कुछ बड़ा करने वाली है? अगर ऐसा है तो मैं भी देखना चाहता हूँ। तुम्हें अपने प्यार और अपने जुनून का सबूत देना ही होगा झलक, और आदित्य राणा के साथ तुम जानबूझकर इतना प्यार दिखा रही हो ताकि मैं जलूं, ताकि मैं रिएक्ट करूं, लेकिन ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये सोचते हुए सिद्धार्थ का चेहरा किसी खूंखार शिकारी की तरह दिखाई दे रहा था। वहीं दूसरी ओर झलक, आदित्य, कबीर और अनामिका बड़े आराम से वहां से निकल चुके थे। कुछ ही देर बाद चारों एक बियर शॉप पर पहुंचे और ठंडी ठंडी बियर के ग्लास हाथ में लेकर एक साथ बैठ गए। आदित्य ने गहरी सांस ली, बियर का एक घूंट लिया और मुस्कुराते हुए बोला, बताओ आज का दिन कितना मजेदार था। सच कहूं तुम्हारे आने के बाद तो ऐसा लगने लगा है कि जिंदगी फिर से हसीन और रंगीन हो गई है। कबीर भी हंस पड़ा और बोला, बिल्कुल सही कहा, आज का दिन तो पहले ही शानदार था, लेकिन इस बियर पार्टी ने तो उस पर चार चांद लगा दिए। अनामिका और झलक भी मुस्कुराते हुए अपने अपने ग्लास उठाकर उनके साथ चीयर्स करने लगी और चारों देर रात तक हंसी मजाक करते हुए उस पल का आनंद लेने लगे। तभी कबीर हंसते हुए झलक को देखकर बोला, लेकिन एक बात तो बताइए, मैंने अक्सर मूवीज में देखा है कि पहले के जमाने में लड़कियां बियर का नाम लेना तो दूर, लड़कों के सामने नॉर्मल कॉफी या कोल्ड ड्रिंक पीने में भी झिझकती थी, लेकिन आप बड़े ही आराम से जो करना होता है खुलकर कर देती हैं, अब बियर भी पीती हैं। रियली, ऐसा क्यों? झलक हल्की सी मुस्कुराई और बोली, क्यों, बियर पीने पर क्या सिर्फ लड़कों का नाम लिखा है? नहीं ना, और वैसे भी मैं नशे में धुत होकर गटर में पड़ी रहने वालों में से थोड़ी हूं। मैंने सिर्फ थोड़ी सी बियर पी है, बस, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, जरूरत से ज्यादा पीना गलत है, लेकिन कभी कभी किसी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए थोड़ा हटकर कुछ कर लेना चाहिए। और देखो, ये मेरी अनु, ये तो पहले कभी बियर पीती ही नहीं थी। धीरे धीरे मैंने इसे भी थोड़ा थोड़ा सिखा दिया है। ये सुनकर अनामिका हंसते हुए बोली, बस यार, सिर्फ एक दो सिख ही सीख पाई हूं अभी तक। तभी कबीर मुस्कुराकर बोला, लेकिन ऐसे मौसम में बियर पीने का मजा ही कुछ और होता है। ये कहते हुए उसने शरारत से अनामिका का आधा भरा हुआ बियर का ग्लास उठा लिया और उसी जगह से एक घूंट पी लिया जहां से अनामिका ने पिया था। अनामिका तुरंत हंस पड़ी और बोली, देखो जरा, मुझे छूने में इसका ब्रह्मचर्य टूट जाता है, लेकिन मेरी झूठी बियर पीने में इसका ब्रह्मचर्य नहीं टूट रहा। ये बोलते ही अनामिका शर्म से अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगी, जबकि कबीर ने उसे घूर कर देखा और बाकी सभी जोर जोर से हंस पड़े। थोड़ी देर बाद सभी लोग वहां से निकलकर अपने अपने घर के लिए रवाना हो गए। वहीं दूसरी ओर बेंगलोर में इस वक्त दोनों परिवार मिलकर झलक और आदित्य की शादी की तैयारियों में पूरी तरह जुट चुके थे। आलोक जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, वहीं स्नेहा जी, सौरभ जी और परिवार के बाकी सभी लोग भी शादी की तैयारियों में लगे हुए थे। उन्होंने फैसला किया था कि सभी रस्में और फंक्शन कम समय में पूरे कर दिए जाएंगे, क्योंकि अब वे बिल्कुल भी देर नहीं करना चाहते थे। आखिर उनके बेटे की जिंदगी में खुशियां लौट रही थी, इससे बड़ी खुशी उनके लिए और क्या हो सकती थी। इसी बीच आलोक जी ने झलक और आदित्य दोनों को मैसेज करके खुशखबरी दी कि उनके पास अब सिर्फ एक हफ्ता बचा है। एक हफ्ते के अंदर उन्हें अपना सारा काम खत्म करके वापस घर आना होगा, क्योंकि शादी की लगभग सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। झलक ने मैसेज पढ़ते हुए मुस्कुराकर कहा, सिद्धार्थ की शादी तो कल तक खत्म हो जाएगी, उसके साथ हमारा आखिरी हिसाब किताब भी कल पूरा हो जाएगा। उसके बाद ओबरॉय परिवार के साथ भी जो बाकी हिसाब है वो निपटाकर हम वापस निकल जाएंगे। ये सुनते ही आदित्य के चेहरे की मुस्कान और गहरी हो गई और वो झलक को प्यार भरी नजरों से घूर कर देखने लगा। तभी कबीर ने उसे कोहनी मारते हुए कहा, भाई, ये क्या कर रहे हैं आप? मैं मानता हूं कि आपकी होने वाली बीवी बहुत खूबसूरत है, लेकिन इतनी देर तक पब्लिक प्लेस में भाभी को घूरते रहेंगे तो आसपास के लोग गलत इंप्रेशन ले सकते हैं। लोग आपको लड़की छेड़ने वाला समझकर पीट भी सकते हैं। आदित्य हंसते हुए बोला, अरे, मैं अपनी होने वाली बीवी को देख रहा हूँ, इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? और वैसे भी तुम तो बाल ब्रह्मचारी हो, प्यार मोहब्बत जैसी चीजों का तुम्हें क्या ही पता होगा। इतना सुनते ही अनामिका मुस्कुराई और चुटकी लेते हुए बोली, एक बात बताइए, आप बचपन से ही बाल ब्रह्मचारी हैं या फिर हाल ही में कोई नया कोर्स ज्वाइन किया है?
कबीर ने तुरंत अनामिका की तरफ घूर कर देखा और बोला, हेलो, मैं कब से बाल ब्रह्मचारी हो गया? और किसने कहा है कि मुझे प्यार के बारे में कुछ नहीं पता? प्यार क्या होता है मैं अच्छी तरह जानता हूँ, प्लीज मेरे सामने ऐसा ड्रामा मत करो। इतना कहते कहते अचानक कबीर की आंखों के सामने अतीत की कुछ दर्दनाक यादें तैर गईं। उसके चेहरे की मुस्कान पल भर में गायब हो गई और उसकी आंखें दर्द से भर उठीं। वो धीमी लेकिन भारी आवाज में बोला, शट अप, प्यार के बारे में मैं जितना जानता हूँ शायद कोई और नहीं जानता। इतना कहकर वो चुप हो गया। अनामिका उसे हैरानी से देखने लगी। वो सोचने लगी, आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि कबीर एकदम से इतना बदल गया? उधर आदित्य कबीर और अनामिका के बीच हुई पूरी बातचीत ध्यान से सुन चुका था। वो कबीर के चेहरे पर छिपा दर्द भी साफ पड़ चुका था। तभी उसने मन ही मन एक फैसला किया, अब बहुत हो चुका, कबीर की जिंदगी में जितना दर्द था वो काफी है, अब समय आ गया है कि उसकी जिंदगी भी संवर जाए। मैं अनामिका को कबीर के अतीत का पूरा सच बता दूंगा, उसे ये जानने का पूरा हक है कि आखिर कबीर के दिल में इतना दर्द क्यों है। झलक ने आदित्य की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोली, डोंट वरी, वो मेरी बहन है, वो सब संभाल लेगी, मेरे ख्याल से अब उसे सारा सच पता होना ही चाहिए। आदित्य हल्का सा मुस्कुराया और बोला, समझ गया मैडम, मैं इतना भी बुद्धू नहीं हूँ। ये सुनकर झलक मुस्कुराती हुई जाकर गाड़ी में बैठ गई। वहीं कबीर का चेहरा पूरी तरह उतरा हुआ था, वो चुपचाप जाकर गाड़ी की आगे वाली सीट पर बैठ गया। आदित्य ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और समझ गया कि इस वक्त कबीर अंदर से पूरी तरह टूट चुका है। दूसरी ओर अनामिका का चेहरा भी पूरी तरह गंभीर हो गया था। वो लगातार यही सोच रही थी कि आखिर कबीर के अतीत में ऐसा क्या हुआ था जिसने प्यार का नाम सुनते ही उसकी आंखों में इतना गहरा दर्द भर दिया। आगे की स्टोरी के लिए बने रहिए दोस्तों।